पृष्ठ संख्या 20। एक व्यक्ति था, नाम था मदन मोहन गुगलानी। अमृतसर में 8 जनवरी 1925 को जन्म हुआ। अधूरी अर्थहीन दुनिया में प्रवेश। पिता करमचंद गुगलानी अच्छे खासे वकील थे। अमृतसर के प्रतिष्ठित नागरिक, जागरूक कर्मकर्ता, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारी। साहित्य और संगीत में उनकी दिलचस्पी थी। मदन मोहन को उनसे यह रुचि और संस्कार मिले। पिता की बैठक में मित्रों के बीच चलती वाल्मीकि से लेकर मैथिली शरण गुप्त तक की आलोचना को मदन ध्यान से सुनता और कभी-कभी संस्कृत में गद्य पद्य रचना का अभ्यास भी किया करता। प्रारंभिक प्रभावों की छाप पड़ती ही है। बचपन से ही अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति सतर्कता और प्रतिक्रिया का भाव राकेश के मन में पैदा हुआ। बहुत से निषेधों, पुरानी मान्यताओं से भरा हुआ संकरा अंधेरा घर, दादी माँ का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो हर नजर से उसे बचाए रखना चाहता है, चमगादड़, भूत प्रेत, डायन, कंजर, सिद्ध पुरुष, सहेलियों के टोने माने का इतना डर दिखाया जाता कि हमेशा घर में बंद गली में खेलना मना। कंजरों की तरह नाचने का मन होता तो दादी माँ की घूरती आंखों से दुबका बैठा रह जाता। घर में या तो सीलन और नालियों की बदबू या घी, अनाज, तरकारियों, धूप, अगर चंद की गंध, पानी से खेलना मना, बाजार के लड़कों से खेलना मना। नतीजा यह कि जब भी मदन का घर में दम घुटता तो उस घुटन से बचने के लिए अक्सर गली में भाग जाता, फिर पकड़कर बंद किया जाता और तब उसकी एक अलग दुनिया बन जाती। कभी चींटियों की पंक्तियों के साथ दीवार के सुराखों की यात्रा करता हूँ, कभी धूप में उड़ते जर्रों को आपस में लड़ाया करता हूँ। दीवारों के टूटते पलस्तर से लेकर हौज के बहते पानी तक में तरह तरह के चेहरे खोजता हूँ, या वह मन बहलाव के लिए पिताजी की अलमारी में भरी बेशुमार किताबों से खेलता। दो लोगों से उसे बड़ी चिढ़ होती, एक पंडित लोकनाथ से और दूसरे सरदार निहाल सिंह से, क्योंकि दोनों कर्ज वसूल करने आते थे, क्योंकि निहाल सिंह के कर्ज के मारे सारी खुशियां, सारा उत्साह, खुलकर जीने की हर कामना कील पर टंगी रहती। और भी बहुत से लेनदार घर में आते रहते। मदन को बड़ी उलझन होती, तरस भी आता, चाहता कि किसी तरह सारे कर्ज एक साथ उतर जाए। दूसरी ओर घर में बहुत सी चीजें दिखाई देती। माँ की अलमारी में पीला हरिण, कुछ चीजें दीवार पर लटकी हुई, सितार, वायलिन, शिकार किया गया मगरमच्छ, इन सभी चीजों को छूने छेड़ने का उसका मन होता, लेकिन कड़े अनुशासन में वह कुछ न कर पाता। दादी माँ जब मूर्तियों को नहलाती तो पूजा पाठ के बाह्याचरण से ज्यादा वह आंतरिक संस्कार, अंतर के आचरण को लेकर सोचता कि ठंड में मूर्ति को ठंडे पानी से क्यों नहला रही हैं, गर्म ऊनी कपड़े क्यों नहीं पहना रही हैं, यह कैसा मूर्ति मनोविज्ञान है। बड़ों जैसी नजायज हरकतें उसे कभी अच्छी नहीं लगती। कहना न होगा कि इस अतिरिक्त अनुशासन, बाह्याचरण, नियम और निषेधों के कारण वह धीरे धीरे इन सबके प्रति गहरा आलोचक बन गया था। हर स्थिति पर गहराई से सोचने की, सोचते रहने की प्रवृत्ति बनती गई। पृष्ठ संख्या 21। एक एक करके कई घटनाएं घटित हुईं जिन्होंने मदन के मन पर गहरे प्रभाव छोड़े। वर्षों बाद भी उसे यह लगता रहा कि कभी-कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कभी भी बीतती नहीं। अपने पिता की मृत्यु का कारुणिक दृश्य उसके दिलो दिमाग पर हमेशा छाया रहा। कई महीने का किराया चूंकि बाकी था, इसीलिए मकान मालिक का यह हठ था कि मैं मुर्दा नहीं उठने दूंगा। सब कुछ हो गया, माँ की चूड़ियां बेचकर किराया भी अदा हो गया और मुर्दा उठने दिया गया। इस घटना के समय अपना सिर बाहों में डाले घर की सीढ़ियों पर बैठे मदन के लिए यह उसके जीवन का विरूप अनुभव था। उसके व्यक्ति का एक आहत पक्ष था। गर्दिश के दिन में अपने को व्यक्त करते हुए राकेश कहते हैं, वह नहीं समझता था कि उसके लिखे शब्दों में अनायास ही जो एक कटुता घुल जाती है, उसका वास्तविक स्रोत अंदर का वह रिसता हुआ बिंदु ही है। भावुक मन पर बहुत से प्रभाव निरंतर पड़ते रहे, जिन्होंने निश्चित रूप से राकेश को रचना प्रेरणा दी, गहरी संवेदनशीलता और अनुभवों का विस्तार दिया। शवदाह के बाद शमशान से लौटने पर माँ भाई बहन की जिम्मेदारी उसी पर आई। कोई विकल्प ही नहीं था। 16 साल की उम्र में जिंदगी ने एक चौखटे में फिट कर दिया था। जैसे भी हो, अपने को उस चौखटे के आकार में ढालना था। आंखें आसपास की जिंदगी के प्रति बहुत सतर्क हो रही थी। अपने से बाहर घर को और घर से बाहर सामाजिक बंधनों को प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने लगी थी। किशोर आयु में ही लोगों के चेहरों की परतें उसके सामने खुलने लगी। पिता की मृत्यु के बाद शोक सभा में बहुतों के भाषण सुने, लेकिन किसी को फिर नहीं देखा। सभाओं भाषणों की निरर्थकता वह समझता था, बनावटी चेहरों की असलियत भी पढ़ सकता था। उस आयु में ही दिखावटीपन से, मुखौटों से उसके मन में बड़ी हलचल होती कि लोग ऊपर की झिल्लियां उतार कर बात क्यों नहीं करते। जैसे हैं वैसे बनकर जिए और विश्वास के साथ जिए, तो इनके हितों को क्या क्षति पहुंचेगी? क्या कभी किसी भी क्षण ये अपने छल के साक्षी नहीं होते, उसकी प्रताड़ना नहीं सहते? कहने की आवश्यकता नहीं कि यही राकेश की अपनी दृष्टि है जिसने उन्हें अपनी ही तरह जीने दिया, अपने ही द्वंद्वों में, लेकिन पूरी सच्चाई से, छल कपट या धोखे से नहीं, घरेलू जीवन में भी नहीं और साहित्यिक जीवन में भी नहीं। पिता की मृत्यु के बाद ही मदन ने संस्कृत छोड़कर हिंदी में लिखना आरंभ किया, एक नए नाम से, और उनकी कहानियां सरस्वती, सरिता आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। संदर्भ एक, सारिका, फरवरी 1973, कॉमा, गर्देश के दिन, मोहन राकेश, पृष्ठ संख्या 21, 2, परिवेश, चींटियों की पंक्तियां, जमीन से कागजों तक, पृष्ठ संख्या 16, 3, वही, पृष्ठ संख्या 17। पृष्ठ संख्या 22। अनुमान यह लगाया जाता है कि नन्ही शायद उनकी पहली कहानी है जो उन्हीं की हस्तलिपि में स्कूल की परीक्षाओं की लंबी कॉपी में कागजों पर लिखी हुई प्राप्त हुई है, और उसकी मृत्यु के बाद सारिका ब्रैकेट में मार्च 1973 ब्रैकेट क्लोज में प्रकाशित हुई। यह 7 मई 1944 में लाहौर में लिखी गई। इसके पांडुलिपि पर तरह तरह से राकेश लिख कर देखा गया है। संभवतः यह प्रक्रिया उपनाम चुनने की रही है जो बाद में उनका नाम ही हो गया। वैसे राकेश की डायरी के अनुसार उनकी पहली प्रकाशित कहानी भिक्षु ब्रैकेट में सरस्वती भाग 46 ब्रैकेट क्लोज है। राकेश की साहित्यिक यात्रा को समझने के लिए इन दोनों कहानियों का महत्व है। नन्ही में यथार्थ की पकड़ है तो भिक्षु में नाटकीयता और एक विशिष्ट वातावरण जो उनके नाटकों का बीज माना जा सकता है। कथाकार कमलेश्वर ने राकेश की अप्रकाशित कहानियों को एक घटना नाम से प्रकाशित करवा दिया है। यह कहानी संग्रह राकेश की समूची रचना प्रक्रिया, मानसिक हलचल और निरंतर खोज की आकुलता को स्पष्ट करता है। कमलेश्वर के ही शब्दों में राकेश ने जिंदगी, स्थिति, परिस्थिति और माहौल की किन-किन मंजिलों को कब और कैसे पार किया, रचना सीमाओं को कैसे तोड़ा, किस तरह और बड़ी तथा और भी व्यापक सीमांतों से राकेश की रचनाएं जुड़ती गईं, किस मानसिक उथल-पुथल से उसे गुजरना पड़ा, जिंदगी में किस महत के लिए लड़ना स्वीकार किया और अपने आसपास की जिंदगी में राकेश की संलग्नता और नए मूल्यों के प्रति संबद्धता कितनी गहरी थी। आज के आदमी की संश्लिष्ट तकलीफों की अमूर्त परतों को पकड़ पाने की क्षमता का रचनात्मक विकास क्रम क्या है? इन सब बातों का स्पष्ट संकेत इन प्रारंभिक कहानियों से ही मिलने लगता है। इसी में कमलेश्वर ने भिक्षुक कहानी को रंगमंचीय नाटकों की उस यात्रा के अग्नि बीज के रूप में देखा है जो आषाढ़ का एक दिन के साथ सार्थक रूप से शुरू होकर एक मंजिल भी बन गई और क्लासिक चेतना का उदय भिक्षु से ही माना है, क्योंकि राकेश की वह खासियत थी कि वह शुरुआत करने में भी विश्वास रखता था और जो भी शुरुआत करता था उसे विलक्षणता से व्याप्त कर लेता था। भिक्षु एक शुरुआत है, आषाढ़ का एक दिन उसकी विलक्षण व्याप्ति। नन्ही उस यथार्थ की शुरुआत है जो राकेश के साहित्य का आधार है। राकेश की जिंदगी की हकीकत उसके साहित्य की भी हकीकत है। शुरू से ही एक विद्रोही मन स्थिति ने जन्म लिया। विद्रोह झूठ, कृत्रिमत्ता और छल के विरुद्ध। स्वभाव में एक अस्थिरता बनती चली गई, क्योंकि उसने कभी भी जीने का कोई भी क्षण अकेला स्वतंत्र नहीं माना। वह क्षण तो आगे पीछे के क्षणों में खोया रहता है। जो बीता जाता है मन उसमें अपनी जड़ें फैलाए रखता है। जो अनागत है उसकी ओर उसकी डालियां हिलती रहती हैं। जीवन का हर दिन पिछले दिन के अंदर से उगकर आता लगता है। संदर्भ 1, सारिका, मार्च 1973, पृष्ठ संख्या 62। 2, एक घटना, राकेश की ये प्रारंभिक कहानियाँ, कमलेश्वर, पृष्ठ संख्या 7। 3, वही, पृष्ठ संख्या 5 से 6। पृष्ठ संख्या 23। आने वाले कल को जल्दी से अपने अंदर से उगा लेने को व्याकुल, इसी आने वाले क्षण को पकड़ने की व्याकुलता ने राकेश को मरते दम तक सहज नहीं रहने दिया। हालांकि राकेश का कहना है कि संदेह होना अच्छी बात है, इससे अपनी ईमानदारी पर विश्वास जमता है, लेकिन यह भी सही है कि इस अस्थिरता से अतिवादी प्रवृत्तियां भी पनपी, रह रह कर आक्रोश भी, और उसे भी स्वयं लगा कि 19 साल की उम्र में वह बहुत विद्रोही हो गया था। कल के संस्कार और आज की अनुभूतियों की टकराहट चलती रहती। कैशोर्य के सपने आज के घोर यथार्थ के आगे टहलते नजर आते। बीती हुई जिंदगी और सामने दिखाई देती जिंदगी में कोई साम्य नजर न आता। लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में उच्चतर शिक्षा हुई, शास्त्री की उपाधि ली, संस्कृत में एमए किया, पर पढ़ते हुए एक जड़ता, एक आतंक उदासी मन को छापे रहती। अपने जिए हुए जीवन के प्रति मन में तीव्र वितृष्णा जागती थी। हर वक्त एक टेंशन और उसका मन एक ऐसी गति की कल्पना करने लगा जिसमें प्रवृत्ति तो होगी पर साथ ही प्रवृत्ति की मजबूरी नहीं। विवशता को भोगा था, इसीलिए अब वह किसी विवशता के लिए तैयार नहीं था। निरंतर चलते जाने की धुन, रास्ता बनाते जाने का आग्रह और विद्रोह, निश्चय और उत्साह, लेकिन साथ ही साथ हमेशा एक प्रश्न, द्वंद्व और उलझन भी। और उस समय भी उसके मन में कितने ही विचार उलझा करते। वह सोचता एक जागरूक की तरह कि आर्थिक क्रांति के साथ साथ सारी दुनिया में एक और क्रांति का होना अनिवार्य है। यह क्रांति होगी मानवीय संबंधों में, हमारी सामाजिक संस्थाओं में, धर्म, नैतिकता और संस्कृति। संबंध ही हमारे संस्कार जिस सभ्यता की देन है वह अब खोखली पड़ चुकी है। क्यों खोखली पड़ चुकी है इसका कोई उत्तर उसके पास नहीं था, लेकिन इसे वह महसूस करता था। अपने को शांत करने के लिए फिर वह कॉफी हाउस या रेस्तरा में बैठा होता, बिना मतलब बहस करता, वातावरण को हिलाने वाली हंसी में हंस रहा होता। विस्की का गिलास हाथ में लिए वैदिक ऋचाओं की व्याख्या कर रहा होता। शाम को कॉलेज हॉल में नाटक की रिहर्सल करते हुए, कई कई पात्रों का अभिनय करते हुए, अलग अलग भूमिकाओं में जीकर अपने को, अपने असली रूप को पहचानना चाहता, या नारे लगाता, चिल्लाता, स्टूडेंट्स यूनियन की मीटिंग या किसी जुलूस में शामिल हो जाता, रात को दास्तोएवस्की का कोई उपन्यास पढ़ता, बार बार लिख कर फाड़ता, फिर लिख कर अपने से मुक्त होना चाहता। लेकिन मुक्ति इतनी आसान नहीं थी। इसी समय दो दुर्घटनाएं एक साथ हुई जिन्होंने उसके भावुक मन को झकझोर डाला। देश का विभाजन लाहौर में रहकर आंखों से देखा और उसी के आसपास किसी अत्यंत प्रिय की मृत्यु। पहली ने परिवेश से उखाड़ कर फेंक दिया, दूसरी ने उखड़ने की एहसास को बहुत गहरा बना दिया। लाहौर की भूमि से ही वह एकदम उखड़ गया, क्योंकि उस भयंकर विस्फोट, अग्निकांड, हत्या, लूटपाट, पाशविक बलात्कार में उसे जीवन और भी विरूप लगा। पृष्ठ संख्या 24। पिता की मृत्यु की घटना के बाद इस नृशंस दृश्य ने उसे अंदर तक दहला दिया। विभाजन के बाद उसका परिवार जालंधर आकर बस गया, जहां उसने एमए हिंदी से प्रथम श्रेणी में पास किया। साहित्यिक अभिरुचि पनपती रही, लेकिन घटनाओं ने मिलकर 22 साल की युवावस्था में ही इसे बुजुर्ग बना डाला। अपनी सारी कटुता को निकालने का रास्ता उसे कागजों में मिलने लगा, लिखने, फाड़ने, जलाने का एक क्रम। तब से निरंतर राकेश के अंदर की तपिश कभी बुझ नहीं पाई, बल्कि वही उसकी रचनात्मकता की प्राण बनी रही। भटक भटक कर नई पगडंडियों की तलाश उसका लक्ष्य बन गया। जीवन और साहित्य दोनों में ठहराव और स्थिरता से चिढ़ हो गई। अनिवार्यता जैसे शब्द से एकदम भड़क उठने वाला व्यक्तित्व, अनिश्चित गंतव्य का एक आकर्षण, अनिश्चित की भावना का हर क्षण जो पुलक देता है, वह बंधे जीवन की संपूर्ण निश्चितता कहाँ दे पाती है। भटकता हुआ वह अमृतसर पहुंचा, वहां से दिल्ली, दिल्ली से बंबई, बेकार आजीविका की खोज। कई महीने भूखे रहकर फुटपाथ पर सोते बीत गए। लगता है राकेश ने बंबई में 1945 के आसपास किसी फिल्म कंपनी में कहानीकार के पद पर काम करना शुरू किया था, लेकिन किन्हीं विशिष्ट तथा अव्याख्येय कारणों से उस पद से इस्तीफा दे दिया। अपने जीवन के लाभों को भविष्य की सुनहरी आशाओं की वेदी पर न्यौछावर न कर सकने के कारण अनिवार्य बंधन आ जाने पर गहरे सोच में पड़कर सर झटक कर एकदम घबरा कर कहीं और कुछ ढूंढना अपने मन के अनुकूल। कृष्ण चंदर से हुई अपनी बातचीत के दौरान वह कहते भी हैं, जिस तरह तुम फिल्मों के लिए लिख लेते हो मैं नहीं कर सकता। कैसे तुम ऐसी फिल्मों के लिए लिख लेते हो? मैं दो खाने नहीं बना सकता, मेरा सारा वजूद एक खाना है। इसी आंतरिक व्यवस्था ने राकेश को एक जगह नहीं टिकने दिया, अचानक कहीं गायब। सम्मानपूर्ण जीवकोपार्जन के साधन की खोज शुरू की तो 1947 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन कॉलेज में हिंदी के अतिरिक्त भाषा के रूप में शिक्षण के लिए प्रोफेसर M.M. राकेश की नियुक्ति हुई। वर्षा के भीगे दिन से एक शुरुआत, लेकिन यह नौकरी ज्यादा दिन नहीं चली। सन 39 में छिन गई। कारण था आंखों का निर्धारित सीमा से अधिक कमजोर होना, फिर बेरोजगारी के दिन दिल्ली में रहकर काटे। बाद में जालंधर के DAV कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हुई। 6 महीने बाद ही बिना कन्फर्म किए नौकरी से हटा दिया गया, क्योंकि राकेश ने यहाँ टीचर्स यूनियन की गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया और अधिकारियों की दमन नीति का बराबर विरोध किया। जिन मित्रों के विश्वास पर यह लड़ाई लड़ी थी, वही अंत में धोखा दे गए। उसी समय की लिखी हुई कहानी लड़ाई इन सारे कटु अनुभवों और संघर्ष की साक्षी है। संदर्भ: 1. परिवेश, यात्रा का रोमांस, पृष्ठ संख्या 71। 2. सारिका, मार्च 1973, पृष्ठ संख्या 74।